आगे रुकू नंबर 9 197 से 210 रज़ाए इलाही को पाने की कोशिशें करना, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला हमें हज के ज़िमन में कुछ चीज़ें मज़ीद बताने वाले हैं। अल हज अशहुरु मालूमात, हज के महीने मुकर्रर हैं, यानी हज सारा साल नहीं होता, ख़ास दिनों में होता है। इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम करे वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफ़र खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है, और अक्लमंदो मुझसे डरते रहो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मस्जिद हराम के पास जिक्र इलाही करो और इसका जिक्र करो जैसे किसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने आबा अजदाद का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बस लोग वो हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में दे, यानी सिर्फ दुनिया दे। ऐसे लोगों का आखरत में कोई हिस्सा नहीं। और बाज़ लोग वो कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अजाब जहन्नम से निजात दे। ये हैं वो लोग जिनके लिए इनके अमाल का हिस्सा है, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह ताला की याद इन गिनती के चंद अय्याम यानी अय्याम तशरीक में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेज़गार के लिए है, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। बस लोगों की दुनियावी गरज की बातें आपको खुश कर देती हैं, और वह अपने दिल की बातों पर अल्लाह ताला को गवाह करता है, हालांकि दरअसल वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन पर फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। और जब उसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तासुब इसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नम ही है, और यकीनन वो बदतरीन जगह है। और बाज़ लोग वो भी हैं, दुआ करें अल्लाह हमें उनमें कर दे, कौन जो अल्लाह की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। ए ईमान वालो, या अय्युल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। क्या लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला बादल के साहिबानों में आ जाए, और फरिश्ते भी, और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। क्या पता चला इन सारी आयात में कि सहाबा कराम अपनी जान अल्लाह और उसके दीन पर निछावर करने वाले थे, अल्लाह रसूल की खातिर हर कुर्बानी देने वाले थे। इनकी सोचों में, इनके जज्बात में, इनके आमाल में एक लफ्ज कंधा था, इन ग्रेप था, और वो क्या? अल्लाह की रजा, रजा इलाही का बड़ी है। इसीलिए तो अल्लाह उनसे राजी हुआ। और ख़ास तौर पे इस हिस्से की जो मेन आयत, उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सहाबा कराम की सबसे बड़ी खूबी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना था, आधे नहीं थे। देखिए जहाज़ में पूरे अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा बंद होता, ट्रेन में एक पाँव अंदर और एक बाहर और ट्रेन चल जाए, हलाकत। एसी चल रहा है, दरवाज़ा खोल के बैठ जाए, ज़रूर बीमार होंगे, या पीछे से गर्मी लगेगी, आगे से ठंड लगेगी। ये जो अधूरा होता है ना दीन में रहना, ये बड़ा ख़तरनाक है। आप देखिए कि लोग क्या सोचते हैं। मिसाल सिर्फ इसलिए दूंगी कि समझ आ जाए। इस रूम में आप बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल है, बड़े पुरसकून हैं आप, लेकिन है तो कुरान, चुभता, मुश्किल लगता है, पता नहीं कोई बात ऐसी आ गई जो मेरे ही ना ऊपर तनकीद हो जाए, मैं ऐसा करती हूँ वहाँ बैठती हूँ बाहर। अब मैं अगर बाहर जाऊँगी, मेरे जैसे 8-10 और भी आ गए, तो ये नहीं बाहर वाला डोर ब्लॉक हो गया, ऊपर से कुछ और सिस्टर्स आती हैं, जो ही वो उस डोर में देखेंगी तो क्लॉग है, वो क्या सोचेंगी कि ये भी हॉल फेल, वो पीछे का हॉल भी भर गया, रास्ते का पैसेज भी बंद, ये तो सीढ़ियों तक आए हुए हैं, क्या करेंगे वो, चले जाएंगे। लिखिए, आज हम मुसलमान आधे दीन के अंदर और आधे बाहर ये दूसरों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि ज़रा ऐसा लुब्रिकेटेड सा, ये लिबरलिज्म वाला डाइल्यूटेड फॉर्म का दीन रखो तो सब अंदर आ जाएंगे, नहीं आते। आप दूध में डायरेक्ट शरबत डालें, उसका टेस्ट, और खूब सारी चीनी डाल के एक चम्मच शरबत डाल दें तो उसका टेस्ट, फ्रेश जूस निकालें उसका टेस्ट, और चीनी डालकर 2-4 घूंट शरबत के डाल दें या जूस के डाल दें, टेस्ट फर्क होगा ना। इस्लाम को एज इट इज लीजिए, इन द ओरिजिनल फॉर्म एज इट इज, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, यही कहते हैं, खालिस कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। अमेरिका में आपने वही दूध की बॉटल, यानी जब मैं रहती थी तब तो खैर काफ़ी सस्ते थे, लेकिन ये जो लास्ट ट्रिप में मैंने चेक करवाया ना, तो 1 लीटर दूध $2 से $3 का आता है, और वही दूध आप दूर ऐसे स्टोर जिन पे ऑर्गेनिक स्टोर बना हुआ है तो वो $7-8 का आता था, और अब मेरे लिए इससे भी बढ़ गया होगा। पेरिस में आई तो BO BIO लिखाओ, दैट मीन प्योर, कुछ नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं निकाला हुआ। अच्छा प्योर जूस पिए ऑरेंज का तो ज़रा सा कड़वा टेस्ट नहीं अच्छा लगता, लोगों को चुभता है, थोड़ा सा टिंजी टिंजी होता है, और चीनी मिला शरबत, ये जो आपके बच्चे इतने इतने छोटे जूस के डब्बे पीते हैं, जूस नहीं होता, आप जाके आज देखिएगा छोटे डिब्बे जो आप बाजार के जूस पीते हैं ना या पिलाते हैं मासूम बच्चों को, उस पर ड्रिंक लिखा होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना वो उसको जूस नहीं कहते, रंग होता है, कॉर्नफ्लावर होता है, फ्लेवर होता है, और चीनी होती है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बड़े बड़ा खूबसूरत आम बना देते हैं, बड़ा खूबसूरत ऑरेंज डाल देते हैं, सेहत ख़राब होती है। बार बार मीठा जूस पियेंगे तो सेहत ख़राब होगी। दीन जब दूसरी चीज़ों को डाल डूल के मीठा मज़ेदार रंग बिरंगा सा करें तो ईमानी सेहत ख़राब होती है। प्योर दीन लगता लोगों को फीका फाका ही है, लेकिन सेहत वाला होता है। तो जो लोग किनारों पे रहते हैं ना, वो दूसरों को भी रोक लेते हैं। अल्लाह ताला ने हज के ज़िमन में, आप देख रहे हैं ना कि पीछे आयते हज और उमरे की हैं, कि कैसे वो हज को एक मेला बनाकर अपनी कमाइयाँ करने का ज़रिया बनाते थे, तिजारत रस्म थी, मेला था, लोग वहाँ अल्लाह से जुड़ने की बजाय अपने बुज़ुर्गों से जुड़ जुड़ के आ जाते, खूब ढेंगे मारते, मेरा वो ख़ानदान, मैं उससे हूँ, मैं ऐसे हूँ, और वो सिर्फ़ एक ज़ाहरी रिचुअल अदा करते, दिल बिल्कुल वैसे का वैसा होता। अल्लाह ने बता दिया कि मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन तो वो होते जो शहवतों में जीने की बजाय मकसद के लिए जीता है, अपने मामलात में अल्लाह की नाफरमानियों से बचता है, और इज्तमाही ज़िंदगी में झगड़ों की नौबत आ जाए तो उससे बचता है। हज क्या सिखाता है कि झगड़ा ना करो, फला रफस फला जिदाल, शहवानी फेल नहीं कर सकते। हज का सफ़र आपका अखलाक भी संवारता है और आपको इज्तमाहीत के लिए ज़ादु तकवा भी अता करता है। लेकिन याद रखिए कि जो लोग ज़ादु तकवा के बग़ैर हज कराते हैं ना, वो वापसी पे जमजम, खजूरें, पाकिस्तान की बने हुए जाए नमाज, पाकिस्तान की बनी हुई तस्बीहें लेकर आते हैं। आप में से जो रिसेंटली हज उमरे से आए हैं ना, और वो जो आपने तोहफे ख़रीदे हैं ना वहाँ से, देखिएगा उसमें 80% के पीछे पाकिस्तान लिखा होता है। एक सिस्टर ने कहा कि वो जाने से पहले कितनी जाए नमाजें ख़रीद के इधर ही रख गई, कि जब आके दूसरों को बांटनी है तो अभी ले लूँ, वहाँ से भी जो लानी है वो भी तो इधर से ही जाती है। कुछ कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये फेरा तो लगा ही है ना मदीने का और मक्के का। तो लिखिएगा, एक शख्स पूरे साजो सामान के साथ एहतमाम के साथ, इकला सूटकेस भी नए खरीदते हैं लोग, कि नहीं नहीं अल्लाह के घर जा रहे हैं, पुराने गुनाहगार सूटकेस के कपड़े भी नए खरीदते, जूते भी नए खरीदते, कहते अल्लाह के घर जा रहे हैं, पूरा खूब प्रोटोकॉल से A1 पैकेज लेता है, 5-स्टार होटल का पैकेज, और दूसरा शख्स اعتماد اللہ کا سرمایہ لے کر نکلے تو دونوں کے سفر حج کے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حج کو بھی اتنا مہنگا نہ کر دو کہ عام لوگوں کی ریچ میں بھی نہ رہے. یا اولو الالباب کی بات ہے, عقل والو عقل استعمال کرو, تمہیں وہاں سے کچھ بھی نہ ملے گا. علامہ اقبال نے کئی سال پہلے نظم کہی تھی نا کہ حج کا تحفہ زمزم اور پتہ نہیں کس کے سوا اور کچھ نہیں ہے, کیا کھجور اور زمزم کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ ہم وہاں سے بھی مادہ پرستی کی چیزیں لے کر آتے ہیں. اور آج کا تو حج اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے راضی ہو جائے, بہترین حج کروا لے, ورنہ ہمیں تو اپنے اس حج کی غلطیاں معاف کرانے کے لیے پھر حج کرنے کی ضرورت ہے. وہاں جا کے جو سیلفی کلچر اور جو ایسی چیزیں بن گئی, اللہ تعالیٰ یہ سب چھوڑو. اور پھر اس میں دعا دیکھیے, ربنا آتینا فی الدنیا, یاد رکھیے کہ دعا بندے کے اندر کی کیفیت کا اظہار ہوتی ہے. جو آخرت کی عظمت کو لے کر حج پہ جائے گا نا تو وہ آخرت کی دعائیں کرائے گا, اور جو دنیا کی عظمتوں میں ہوگا وہ کہے گا میں تو جی بچہ لینے جا رہی ہوں, وہ جی میں تو پیسہ لینے جا رہی ہوں, میں تو بچوں کے رشتے کرانے جا رہی ہوں. تو ربنا آتینا فی الدنیا, اور آت حسنہ کیا ہوتا ہے, دنیا میں جو اللہ کی رضا سے ملے پھر اس کا بعد میں حساب بھی نہ ہو, اور آخرت کا حسنہ تو جنت ہے. پھر اس میں ایک ایسا کردار ہم نے دیکھا جو ایک سیاسی لیڈر لگتا ہے, مجھے ووٹ دو میں تمہارے حالات بدل دوں گا, اور آخری دفعہ وہ تب دکھتا ہے جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کے بچوں کو بھی اٹھا کے پھر روتا ہے کتنا پیارا بچہ ہے تمہارا کیونکہ ووٹ لینے ہیں, اور بعد میں وہ خون چوستا ہے. خوبصورت باتوں کے روٹ میں مصلح دکھتا ہے لیکن عمل کے میدان میں فسادی, علد الحسام کی بات ہے. تو ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ لوگوں کو پہچانے, اللہ مارن الحق کا حق کا ورزق نہ اتباؤ وارن الباطل باطلا ورزق نہ اجتناب. اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کے سودے کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام. یہ آیت بھی صہیب رومی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جب اپنا سب کچھ دے کر اللہ کے لیے نکل آئے تھے. آپ دیکھیے کہ پریکاشنس لینا, تحفظات رکھنا, ان سیکیورٹیز فیل کرنا اور اسلام میں آنا ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک گن مین لے کر اپنی دوست کے گھر جائیں. وہ کہ یہ کیا ہے, کہنا نہیں میرے پیچھے کھڑا رہے گا, مجھے تم سے اپنی جان کا خطرہ ہے, کہیں تم مجھے گولی نہ مار دو. اچھا لگے گا آپ کی دوست کو؟ کبھی بھی نہیں اچھا لگے گا. بالکل اسلام کو اختیار کرنے کے بعد دو چوائسیز ہیں, ایک یہ کہ سارے تحفظات اور مصلحتوں کو پیچھے ڈال دو, سب باڈی گارڈز باہر, اسلام جس چیز کو کرنے کو کہے لبیک, جس سے روک دے آپ روکے. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ, نو ہیکپس, نو ایفس اینڈ بٹس. دوسری صورت ہے کہ بس اتنا اسلام اختیار کرنا ہے جو آپ کی زندگی سے نہ ٹکرائے, آپ کے لائف سٹائل سے نہ ٹکرائے, جو آپ کو فائدہ دے وہ لے لو, جو چھوڑ دے چھوڑ دو, جو عقائد آپ کو اچھے لگے مان لیے, جو نہیں اچھے لگے چھوڑ دیے. تو ایسا اسلام ادھورا اسلام ہے. اللہ کرے کہ آپ اور میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, کیونکہ جو مصلحتوں کو لے کر اسلام میں آتے ہیں نا وہ اپنے نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ ہم سب اپنے اوپر ان چیزوں کو محسوس کریں نہ کہ دوسروں پہ. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ جب پورے اسلام میں آئے تو ہمارے لیے روشنی کے مینار بن گئے. اسلام کیا کہتا ہے کہ صحابہ کی پیروی کرو, یہ ہے مکمل نظام. آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحابہ جیسے بنیں تو صحابہ تو پورے کے پورے اسلام میں تھے. ہمارے کبھی پاؤں اسلام میں ہے تو کبھی سر باہر ہے, تو سر اندر ہے تو باہر ہے. تو ہر مشکل اور پریشانی میں دین پہ جمے رہیے اور شیطان کے نقش قدم پہ نہیں جانا. تو اس پورے رکوع میں سے جو ہمیں رویے ملے اللہ کی رضا کو پانے کے, ذکر کرنا, استغفار کرنا, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرنا, تقوی کی روش اختیار کرنا, اللہ کے لیے یکسو ہونا, اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان کھپا دینا, مصلحتوں کی پرواہ کیے بغیر چلتے ہی جانا. اللہ آپ کو مجھے داخل کر دے. اب اس کے بعد جنت میں جانے کی تیاریاں ہیں. رکوع نمبر 10 آیت 211 سے 216, سل بنی اسرائیل سے, بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब जीनतदार बना दी गई, वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेज़गार लोग क़्यामत के दिन इनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे, अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजा और इनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फ़ैसला हो जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने जो इसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ और इनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया, इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों को इस इख्तलाफ में भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से राहबरी की। और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ राहबरी करता है। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और इसके साथ के ईमान वाले कहने लगे मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। आपसे पूछते हैं, यह है साहबा का दूसरा सवाल। साहबा के सवाल अमल पे उभरने वाले थे। दोबारा पूछ रहे हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि वो माल जो तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, और जो कुछ तुम भलाई करोगे अल्लाह ताला को इसका इल्म है। तुम पर जिहाद फ़र्ज किया गया गो वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो, यानी यू डोंट लाइक टू डू द जिहाद। मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को है और तुम महज बेखबर हो। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इस रुकू में हमें अम हसिब तुम तदखुलुल जन्ना की बात करके जन्नत की रग़बत दिलाई। हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है जन्नत इसके हक में दुआ करती है और कहती है कि या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो कोई 3 बार जहन्नम की आग से पनाह मांगता है जहन्नम इसके हक में दुआ करते हुए कहती है कि या अल्लाह इसे आग से महफूज कर दे। क्या पता चला कि अल्लाह की रज़ा को चाहने वाले जन्नत के तलबगार होते हैं, तकवा वाली ज़िंदगी बसर करते हैं, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बशारते भी देता है और बुरे अंजाम से भी डराता है। फिर इसमें यतीमों मिसकीनों मुसाफिरों पर खर्च करने की बात हुई, रिश्तेदारों पर खर्च करने की बात हुई, वालिदैन पर खर्च करने की बात हुई, और ये सारा कुछ ये बताता है कि आपका मेरा माल हमारा नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। जो लोग इस अमानत का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला इसी को उनकी आखरत के चप्पू बना देता है। कहते हैं कि दुनिया का माल आखरत की कश्ती चलाने के चप्पू हैं, इसको आखरत के समंदर में अपनी दुनिया की कश्ती चलाने का ज़रिया बनाओगे तो दुनिया भी अच्छी मिलेगी आखरत भी अच्छी होगी। कुछ लोग हैं उनकी दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है और वो अपने माल को दीन के रस्तों में भी लगाते हैं, ये काबिले रश्क लोग हैं। इसके बरक्स कुछ बेचारे ना दुनिया के और ना आखरत के हैं। इसलिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं वो पाकर हम आखरत की जन्नत को पा लें। और इसी तरह से आप देखिए आसान तक रहो शैयन व हुवा खैरुल्लकुम वाला कानून समझ लें। ज़िंदगी में हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे दिखती है, कुछ हालात कुछ वाक़ियात ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उसमें खैर बहुत होती है। इसका अपोजिट भी है, बच्चे को चॉकलेट पसंद है हालांकि वो उसके लिए अच्छा नहीं है। माँ कहती है बच्चे को कि तुम दूध पियो, बच्चे को अच्छा नहीं लगता। तो इससे पता चलता है कि जो बंदा अल्लाह पे अपने एतमाद को डाल देता है ना वो हर मौके पे क्या कहता है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे लिए रखा, मैं उस पर खुश हूँ और मैं उस पर मुतमइन हूँ। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला पे अपनी बातों को डालते जाएंगे उतना अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी करेंगे। आगे रुकू नंबर 11 है, आयत 217 से 221। टॉपिक है जिहाद फी सबीलिल्लाह। यसलूनका, तीसरी आयत है इस बारे में जो एक सवाल के जवाब में नाजिल हुई। लोग आपसे हुरमत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना सख्त गुनाह है लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ چوتھا سوال اسی پارے میں، یسلونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز، یعنی وٹ ایور از ایکسٹرا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیاوی کو۔ اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اگلا سوال آ گیا، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بد نیت اور نیک نیت، یعنی دونوں طرح کے معاملات، بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اب عورتوں سے شادی بیاہ نکاح کے مسائل میں سے ایک آیت، اور شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو، ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیا پتہ چلا اس پورے رکوع میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی تھی، چاند کے نکلنے یا نہ نکلنے پہ ایک جھگڑا ہوا، اصل میں واقعہ ہے اس کے پیچھے پورا، رجب 2 ہجری میں مسلمانوں کا ایک دستہ اور مشرکین مکہ کی جماعت میں ٹکراؤ ہو گیا، یہ واقعہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا نام کی ایک جگہ پہ ہوا، تو قریش کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا، غلط فہمی تھی، مسلمان سمجھے کہ آج جماعت الثانی کی 30 تاریخ ہے، مگر چاند 29 کا ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی جو حرمت کا مہینہ ہے، اور عرب لوگ حرمت کے مہینوں کے بارے میں بڑے شدید تھے، بڑے ٹچی تھے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اس پہ یہ ساری آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ صحابہ نے اپنی غلطی مان لی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اچھا ہو لیکن اس سے غلطی سے کوئی کام ہو جائے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی آپ کو مجھے کہ کبھی اگر غلطی ہو جائے تو اس کو مان لو۔ دوسری بات، شراب اور جوئے کے معاملے میں اس آیت میں ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، پانی کی طرح شراب پیتے تھے، پانی تھوڑا ہوتا تھا مکہ میں کیونکہ صحرا تھے، شراب کشید کر کے بناتے تھے، اللہ نے لمحے لمحے سے اس کو ختم کیا۔ یاد رکھیے کہ عقائد میں تبدیلی فوراً آئے گی، عادات میں تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی۔ دو لفظ لکھیے، ریولیوشنری ورسز ایولیوشنری۔ آج ایک اصول اگر آپ سمجھ گئے نا تو بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ عقیدے میں ریولیوشنری، فوراً اپ سائڈ ڈاؤن، یہ نہیں کہ 3 خداؤں کو مانتے تھے تو اب 2 کو مان لو کچھ عرصہ پھر 1، نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ عادات جیسے شراب، جوا، سگریٹ، اسی طرح سود، ان کو ایولیوشنری سلولی سلولی موو کیا۔ تو شراب کا حکم کچھ اسی قسم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو یہ بتا دیا کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے خوب بانٹتے تھے، بعد میں کہتے چلو کیا ہوا شراب پیتے ہیں ہم، جنرس بھی تو ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جس میں نفع ہے اس میں نقصان بھی ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، کبھی موقع ملے تو ان آیتوں کی لمبی تفصیل سنیے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے کرتے کیا کیا نہ چھوڑ دیا۔ پھر آخری حصے میں بلا تنکہ المشرکات کی جو بات ہوئی، تو اصل میں یہاں سے وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جن کا تعلق نکاح، طلاق، حیض، رضاعت اور عدت وغیرہ سے ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق جب آپس میں بنتا ہے تو وہ صرف ایک جسمانی تعلق نہیں ہوتا، ایک بامقصد تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورت باتیں کی ہیں، آئیے تھوڑا سا آگے اور پڑھ کے تو انشاءاللہ پھر میں اس پہ پورا اکٹھا ایک نوٹ دوں گی آپ کو، جس سے آپ کے لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام کبھی بھی فتنوں میں جان بوجھ کے نہیں پڑھتے تھے اور نہ دین پہ کوئی سمجھوتا کرتے تھے، اور اپنی غلطی کو مان لیتے تھے، بہادر بھی بہت تھے۔ دوسری بات آیت 219 سے پتہ چلی کہ صحابہ کرام علم کے بڑے حریص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے، دل کھول کر خرچ کرتے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے خوگر تھے، تبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان یتیم بچوں کے بارے میں بڑے محتاط تھے، ان کے مال کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے، اور یتیموں کا مال کھانا حدیث کی روشنی میں ایسے ہے کہ جیسے دوزخ کے انگارے پیٹ میں رکھنا، اسی لیے اس میں وعید آئی۔ اس پورے رکوع میں سے ہمیں جو اچھے رویے ملتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے، وہ ایمان لا کر ہجرت کرنا، جہاد کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا، نصیحت کرنا، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس سے آگے رکوع نمبر 12 ہے، 222 سے 228، پاکیزہ زندگی کے اصول۔ اس میں انشاءاللہ آپ کا بہت دل لگے گا کیونکہ یہ گھریلو سے مسائل ہیں۔ فرمایا یسلونک عن المحیض، چھٹا سوال ہے اس ایک پارے میں، یسلونک سے، اور صحابہ کی علم کی حرص دکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بامقصد قسم کے سوال کرتے تھے۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ یہاں سے طلاق کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو وہ اسے چھپائیں، یعنی پیٹ میں بچہ ہے اور وہ نہ بتائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ہیں جی وہ موضوعات جس کے اندر عورت اور مرد کے نکاح کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا ساتھی بنا جاتا ہے۔ صرف مقصد شہوت رانی نہیں ہے، با مقصد ہے۔ ایک کسان اور کھیت کا جو تعلق ہے نا، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ایسے ہے، بہت ساری سملیرٹیز بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں پورا اس کو کھول کر بیان بھی کیا۔ عام طور پہ فکشن، فلمیں، ڈراموں میں عورت کو چاند دکھایا گیا، جو مرضی دیکھ لے، چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہے؟ پھول دکھایا، جو بھمرا آئے اس کا رس چوس لے۔ قرآن کہتا ہے حرص لکم، ذمہ دار شوہر۔ کسان گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، ٹیک کیئرر ہوتا ہے، تو شوہر کو بیوی کا ٹیک کیئرر ہونا چاہیے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور جب شوہر اور بیوی دونوں میں ایک ایمان پہ ہو اور ایک ایمان کے بغیر ہو، تو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اس پورے حصے میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور تھوڑی سی اس کی جو باتیں کی ہیں نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ابھی یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے تو آپ کو اینڈ پہ دکھاؤں گی۔ لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قسم سے، طلاق کی قسم کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قسموں کو نشانہ نہ بناؤ، अल्लाह की कसम से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कसम की हिफाजत का हुक्म दिया है, किसी वक्ती जज्बे से मगलूब होकर कसम नहीं खानी चाहिए। अगर कभी कसम खा ली तो क्या करें, 10 मिसकिनों को खाना खिलाइए, या 3 रोज़े रखिए, या फिर एक गुलाम को आज़ाद किया जाएगा। रज़ा इलाही को पाने वाले रवैये कौन से हैं इस रुकू में? तौबा करना, पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करना, तकवा इख्तियार करना और तहारत का अहतमाम करना। अल्लाह हमें इन सब पे अमल की तौफीक दे। आगे रुकू नंबर 13, 229 से 231, हदूद इलाही पर कायम रहना, अत्तलाक मर्रतान। बड़े सब्र से ये सारा रुकू सुनिए और इंशाल्लाह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तर्जमा गौर से सुनने से क्लियर होंगे। ये तल्लाक के 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना या उमदगी के साथ छोड़ देना है, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दिया है इसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो औरत रहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, इसमें दोनों पर गुनाह नहीं, ये अल्लाह की हुदूद हैं। खबरदार इनसे आगे नहीं बढ़ना, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फिर अगर इसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए वो हलाल नहीं, जब तक कि वो औरत इसके सिवा किसी दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेलजोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान लें कि अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की हदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रखा है। जब तुम औरतों को तलाक दो और वह अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आए तो इन्हें अब अच्छी तरह से बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और इन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की गरज से जुल्म और ज्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करेगा इसने अपनी जान पर जुल्म किया, और तुम अल्लाह ताला के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ। और अल्लाह के एहसान जो तुम पर है वो याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत इसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है इसे भी। अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। ये है जी तलाक का मौजू। अफसोस की बात है कि हमने तलाक भी फिल्मों से सीखी। गरज चमक के मर्द गुस्से में तलाक देता है क्योंकि खाने में नमक तेज था, फिर औरत रोती है, पाँव पड़ती है, फिर आसमान पे बादल बिजली गरजती है, फिर बारिश होती है, फिर वो झट से घर का दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर लेता। अफसोस की बात है, ना शादी कुरान से सीखी ना तलाक। यहाँ जिस तलाक की बात है इसको तलाक़ रजई कहते हैं, रजू कर सके मर्द, जिसमें शौहर बीवी से रजू कर सकता है। और रजू का सिर्फ 2 तलाकों तक होता है, तीसरी तलाक बाइंग होती है जो मुकम्मल जुदाई होती है। और तीसरी बार तलाक देने के बाद क्या होगा कि मर्द बीवी को हलाल नहीं समझेगा? रुजू का हक कैसे है? एक हैज से तोहर, यानी पीरियड टू पीरियड लें, या पीरियड से पाक होने से दूसरे पीरियड से पाक होने को कहते हैं खुरू का लफ्ज़, के यानी 3 पीरियड्स या 3 कंप्लीट तोहर होंगे तो इद्दत पूरी होगी। इस्लाम में इद्दत साथ साथ पूरी होती है। उसके बाद फइमसाकुम बिमारूफ, आदाब क्या है कि बीवी को अब तंग करने के लिए मत रोको, यानी जो कसर रह गई थी वो भी पूरी करे, आइंदा बेहतर तरीके से रहने का इरादा हो, नहीं है तो तसरीहुम बेसान। ये तीसरी तलाक है, छोड़ दो, दिए हुए तोहफे वापस नहीं लिए जाएंगे, औरत मर्द का घर छोड़ देगी, अब अगले निकाह के लिए आज़ाद है, पिछले शौहर से निकाह ख़त्म हो जाएगा और पुराने शौहर से नई शरायत पर नया निकाह हो सकता है। यानी बहुत सारे लोग इस तलाक हसना को नहीं जानते। मैं अपने लफ्ज़ों में इस मोहब्बत से या इस दर्द के साथ कहूँगी कि छोड़ दीजिए कि हमारे घरों में अमूमन कितने ही जोड़े हैं, पहले गुस्से में तलाक होती है, फिर बीवी को छोड़ आते हैं बाहर, तलाक एक दो नहीं 10 तलाक है, बल्कि तेरी तलाक एक नहीं 100 तलाक है, तू मुझसे जाकर वापस वापस भी आएगी तो भी तलाक। फजूल बातें हैं, एक मौके पे 10 दफ़ा भी कह देगा तो तलाक गिनी जाएगी। एक दफ़ा कह के छोड़ दे मर्द, एक माह गुजरने दें, दूसरा गुजरने दें, जो ही तीसरा माह गुजरेगा औरत मर्द अलग, लेकिन फ़ायदा क्या है? एक ही तलाक से घर टूटा। देखिए मुर्गी को ज़िबा करते हुए अगर एक दफ़ा छुरी चलाने से गर्दन कट रही है तो आपको ज़रूरी है 3 छुरियाँ चलाएं? इसको नहीं लोग जानते, इसको तलाक़े हसना कहते हैं। एक दफ़ा भी, इवन कभी गलती से दो दफ़ा भी मर्द ने दूसरे माँ फिर कह दिया फिर भी चुप कर जाए, तो कभी भी ज़िंदगी में दोबारा दोनों का निकाह हो सकता है? ये बात नहीं पता हमें, इससे ज़्यादा भी फ़िलहाल मैं नहीं बता सकती। हाँ, हमारे लिए इस रुकू में से अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए जो रवैये मिले वो ये कि अल्लाह की नेमतों को याद रखना है और तकवा इख्तियार करना है। आगे रुकू नंबर 14 है, 232 से 235, अल्लाह ताला के एहसानात की कदर करना। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें तो इन्हें इनके खामिनों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके ज़िम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो दस्तूर के मुताबिक हो। हर शख्स इतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इस बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई ज़र्रत ना पहुँचाया जाए, वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की देखभाल कर रहा है। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें, फिर जब वो मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन इन औरतों से निकाह की बात कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर इनसे ज़िक्र करोगे लेकिन तुम इनसे पोशीदा वादे ना करो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्दे निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म रखता है, तुम इससे खौफ खाते रहा करो। और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश वाला और हिल्म वाला है। ये है जी तलाक का मौजू। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में तलाक से ज़्यादा नापसंदीदा कोई नहीं। ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत 2177 है। लेकिन तलाक पता क्या है? एमरजेंसी डोर, दैट्स इट। एमरजेंसी एग्जिट कब लिया जाता है? जब दूसरे दरवाजे बंद है या उधर आग लगी है, दैट्स इट। बस जब आपके दिल को इस बात का एहसास होगा ना कि अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह का दिलों के हाल जानता है, तो आप किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। बाकी रह गया ये टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों की फ़ायदे और ख़ुशी की खातिर मैंने एक अलग टॉपिक निकाह से तलाक तक दिया था। हम अपने सबीलुल जन्नत क्लास में इन आयात के बाद वो भी सुनाते हैं। जिसको तलाक से मुतल्लिक कोई मसला है, मेरे पास 20 सवाल आते रहते हैं दुख सुख में, मैं उन्हें कहती हूँ जाइए आप पहले वो लेक्चर सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अभी कोई उथल पुथल आपके जहन में हुई होगी, नो प्रॉब्लम, आप उसको सुनिए, इन आयतों की इन डेप्थ तफसीर सुनिए, आपको सब सवालों का जवाब मिलेगा। इस वक्त सिर्फ हम अल्लाह की रज़ा चाहने वाले आमाल नोट करेंगे। नंबर 1, अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान, पाकीज़गी इख्तियार करना, भली बात करना और शाइस्तगी के साथ रहना। और इसके बाद फिर रुकू नंबर 15, सेकंड लास्ट रुकू है हमारा, 236 से 242, अल्लाह की गुलामी और फरमा बरदारी। ये क्या है? फरमाया अगर तुम औरतों को बग़ैर हाथ लगाए और बग़ैर मेहर मुकरर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर ये लाजिम है। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ लगाया हो और तुमने इनका मेहर भी मुकरर कर दिया हो तो मुकर्रा मेहर का आधा मेहर दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ़ कर दें या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। तुम्हारा माफ़ करना तकवा से बहुत नज़दीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। नमाज़ों की हिफाजत करो, यानी तलाक और इस तरह की कहानियों में नमाज़ें ज़ाया न करो, बिलअसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह तआला के लिए बादब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह कि इसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियाँ छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि इनकी बीवियाँ साल भर तक फ़ायदा उठाएं, ना इन्हें कोई निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई करें, अल्लाह गालिब और हकीम है। इस आयत का नंबर नोट कर सकते हैं आप, 240। ये पिछली आयत है जिसमें 1 साल की इद्दत होती थी, अब 4वां 10 दिन की है। अल्लाह ने इन अहकामात को मनसूख कर दिया। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। तो तलाक का मौजू यहाँ पूरा हुआ, जिसमें इद्दत की भी बातें आ गईं, बच्चे की सूरत में बच्चा किसके पास होगा वो भी बातें आ गईं, उसको दूध पिलवाई कौन देगा, कैसे देगा। देखिए, इतनी डिटेल से तो नमाज का भी जिक्र नहीं है कुरान में। यहाँ से समझिए कि मामलात की कितनी अहमियत है। अल्लाह की रज़ा पाने वालों को इस रुकू में से क्या मैसेज मिला? नमाज़ों की हिफाजत करें, एहसान करें, नरमी से काम लें, वसीयत करें, और अल्लाह की तरफ दिली झुकाव हो, और आपस के मामलात में फैयाजी। ये नहीं कि तलाक के बाद दोनों फरीकैन एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, जिधर बैठे बातें कर रहे हैं, अब हम इसके आगे शादी नहीं होने देंगे। कतन ऐसा ना कीजिए, ये अल्लाह तआला की हदों को फलांगना होगा। और आगे फिर रुकू नंबर 16, आयत 243 से 248, दो वाक़यात हैं बेसिकली अब एंड में, जिसका ताल्लुक इंशाल्लाह तीसरे पारे की एक वाक्य से जुड़ेगा जो आपको वहाँ बताया जाएगा। टॉपिक क्या है? अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद और कर्ज़े हसना देना। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा वो लोग जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग ना शुक्रे हैं। इस पे गौर कीजिएगा बाद में। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे? है कोई? बस अल्लाह इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता करेगा। अल्लाह तआला ही तंगी और कुशादगी करता है, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें? पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है, जिहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए। फिर जब इन पर जिहाद फ़र्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाया, तो कहने लगे, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? इससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इनको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। परसेप्शन ही रॉन्ग था, आप देख रहे हैं। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने इसी को तुम पर चुना है और इसे इल्मी और जिस्मानी बढ़तरी भी दी, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ दो। कौन चुना जाएगा? जो इल्म वाला हो और फिजिकली भी स्ट्रांग हो। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। क्या पता चला इसमें वाक़या है जिसका ताल्लुक़ ग़ज़वे बदर से जुड़ेगा? इंशाल्लाह हम तीसरे बारे में जब वो वाक़या करेंगे तो वहाँ आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इनकी बातें होती थी। यहाँ नबी की बात क्या है? इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की ज़ाहरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है, और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। कर्ज़े हसना की बात हुई, यहाँ पहली दफ़ा हुई है पूरे कुरान में। होते होते सूरत हदीत में आप फिर सुनेंगे, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, वहाँ आप बताऊँगी। आप देखिए, आपके लिए एक फ़्लो चार्ट है, इसके नंबर क्विकली नोट करना चाहें। सिर्फ कर्ज़े हसना देने के मुतल्लिक़ कुरान में सूरत बकरा 245 जो हम पढ़ रहे हैं, हदीद 11, सूरत हदीद 18, सूरत मुज़म्मिल 20, सूरत तगाबुन 17 और सूरत माईदा 12। इतनी जगह ये आयत आनी है वहाँ बात करेंगे, यहाँ तो बस रज़ा इलाही को पाने के दो रवैये नोट कीजिएगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह और कर्ज़ हसना देना और लेना। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। आखिरी दो आयात सुन लीजिए, दो तीन आयात हैं, सबर टॉपिक है, 249 से 252। जब हज़रत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो अल्लाह तुम्हें एक नहर से आसमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। दुनिया का पानी था ये। हज़रत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं है। याद रखिए, जितनी दुनिया भरते जाएंगे ना उतना अल्लाह के रास्ते के काम मुश्किल होते जाएंगे। कहने लगे, आज तो हमें ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बस औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रं वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद को ममलकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह बास लोगों को बास से दूर ना करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम फरमाने वाला है। ये अल्लाह की आयात हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। ये आखिरी जुमला याद रखें, कल अगले पारे का पहला जुमला तिल का रसूल, यानी ये पारा रसूलों के तस्करे पे पूरा हो रहा है और अगला पारा रसूलों के तस्करे से शुरू होगा। रज़ा इलाही पाने के रवैये इस फरकू से नोट कर लें, सब्र करना, दुआएं करना, माजी के वाक़ियात से सबक लेना और नेकियों पर इस्तकामत इख्तियार करना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।